हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 364। आदित्य ने उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र करते हुए कहा। सुनैना ने उसकी बात पर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, आदि तुम, मैंने कहा ना, तुम हो ना मेरे साथ तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, और अभी मैं ठीक हूँ और बिल्कुल ठीक भी हो जाऊंगी। सुनैना की ये बात सुनकर आदित्य को बहुत ही अच्छा लगा। वो ये देख रहा था कि सुनैना में कितने बदलाव आ गए हैं। शादी के समय पर वो अपनी पढ़ाई को कितना इम्पोर्टेंस देती थी और एग्ज़ाम देकर जॉब करके सेटल होना चाहती थी, लेकिन उनकी शादी को एक साल होने वाला है और अब वो आदित्य पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है कि उसके बिना तो शायद वो अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती, और आदित्य भी कभी उसकी साइड नहीं छोड़ना चाहता। इसी बात को प्रूव करने के लिए उसने इस वक्त सुनैना का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। आदित्य सुनैना की तरफ देखता हुआ उसमें खोया हुआ सा बैठा था। सुनैना भी उसकी बाहों में बहुत आराम महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद आदित्य का मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ, जिससे उन दोनों का ध्यान उस तरफ गया। सुनैना ने आदित्य की तरफ देखकर पूछा, किसका कॉल है? सुनैना के सवाल का जवाब देने के लिए आदित्य ने अपने मोबाइल फ़ोन पर एक नज़र डाली। उसने देखा कि अनय का मैसेज है। आदित्य नहीं चाहता था कि सुनैना को इन सब के बारे में कुछ भी पता चले, जो भी विराज की किडनैपिंग से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि वो जानता था सुनैना अगर इन सब के बारे में जान गई तो फिर वो इस बारे में जानने की कोशिश करेगी और फिर इन सब में वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएगी, और साथ ही उसकी मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ेगा, जिससे उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है, जैसा कि डॉक्टर ने बोला था। लेकिन अभी वो ठीक थी और काफ़ी नॉर्मल थी, तो आदित्य ने भी उसके साथ उसी तरह बर्ताव किया। आदित्य ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं कॉल नहीं, देखो नोटिफिकेशन टोन रिंग हुई है ना, वो किसी ऑफिशियल ईमेल का नोटिफिकेशन आया है, बस और कुछ नहीं। इतना बोलकर आदित्य मुस्कुराया। फिर सुनैना ने आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ मिनट बाद सुनैना ने उसके सामने बैठते हुए कहा, मेरा डिसीजन सही है ना आदित्य, एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट होते हैं। आदित्य ने उसकी तरफ देखकर उसे बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहा, हाँ ठीक है, और अब अगर तुमने ये डिसीजन ले भी लिया है कि तुम एग्ज़ाम दोगी तो फिर चलो पढ़ाई शुरू करो अच्छे से, लेकिन अभी तुमने मेडिसिन खाई है ना, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर जब उठना और फ्रेश फील करना तो थोड़ी देर पढ़ाई कर लेना, और मैं एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा देर पढ़ने के लिए अलाउ कर सकता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन बस 2-3 घंटे के लिए ही पढ़ना, ओके? आदित्य उसे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, इसलिए सुनैना के पास भी उसे मना करने या उसकी बात ना सुनने की कोई भी वजह नहीं थी। उसकी बात पर राजी होते हुए वो भी मुस्कुरा कर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओके, जैसा मेरे हस्बैंड का ऑर्डर। आदि, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे भी तो एग्ज़ाम होंगे ना, क्योंकि तुम्हारा फाइनल ईयर है। आदित्य ने अपने मोबाइल फ़ोन पर अनय का मैसेज देख लिया था, लेकिन अभी सुनैना उसके साथ ही थी, तो उसके सामने वो वहाँ से नहीं निकल सकता था, क्योंकि अगर वो सुनैना के सामने वहाँ से निकलेगा तो सुनैना उससे 10 सवाल करेगी, और आदित्य सुनैना से जल्दी झूठ नहीं बोल पाता है, किसी न किसी तरह वो उसे पकड़ ही लेती है। इसलिए आदित्य चुपचाप इस तरह से वहाँ पर बैठा रहा, जैसे कि उसे कोई भी मैसेज नहीं आया और उसे कहीं भी नहीं जाना, लेकिन वो कहीं खोया हुआ सा लग रहा था, क्योंकि सुनैना उसका हाथ पकड़कर उससे उसके एग्ज़ाम के बारे में भी पूछ रही थी, जो कि उसने सुना नहीं। सुनैना उसका हाथ अपनी तरफ खींचते हुए बोली, क्या हुआ आदि, क्या सोच रहे हो, कहाँ खो गए एकदम से? सुनैना ने उसका हाथ अपनी तरफ खींचते हुए ये सवाल किया। इस बार आदित्य का ध्यान उसकी तरफ हुआ, उसने थोड़ा सा चौंकते हुए कहा, अरे नहीं कुछ भी नहीं, और तुम अभी तक जाग रही हो क्या? मैंने कहा ना तुमसे मेडिसिन लेकर रेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए, डॉक्टर ने स्पेशली बोला है, और वैसे भी तुम्हारे डोज में वो ऐसी मेडिसिन भी है जिन्हें खाने के बाद नींद आती है, लेकिन तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? आदित्य ने ये सवाल किया। सुनैना जम्हाई लेती हुई बोली, हाँ आ तो रही है नींद, वही तो मैं भी सोच रही थी कि अचानक से मुझे नींद कैसे आने लगी, और मैं तुमसे ये बोल रही थी कि तुम्हारे भी तो एग्ज़ाम होंगे ना, ये बताओ तुम्हें नहीं पढ़ना क्या एग्ज़ाम के लिए, लेकिन तुम हो कि सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात। उसकी इस बात पर आदित्य ने उसके सिर पर हाथ रखा। सुनैना इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी, आदित्य उसके सिरहाने उसका सिर अपनी गोद में रखकर बैठा हुआ था। सुनैना के सिर पर अपना हाथ रखने के बाद आदित्य उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला, इतनी टेंशन मत लो मेरे एग्ज़ाम की, मैं तो ऐसे ही देता हूँ, और वैसे भी मेरी प्रिपरेशन चलती रहती है, मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लेता हूँ कभी कभी, और फिर थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा मैं और पास भी हो जाऊँगा। आदित्य ने काफ़ी लापरवाही से ये बात कही। सुनैना ने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी पलकें अब भारी हो रही थी। उसे सच में नींद आने लगी थी। आदित्य जिस तरह उसके बालों में हाथ फेर रहा था, इससे उसे और भी अच्छा लग रहा था। कुछ ही मिनट में सुनैना काफी गहरी नींद में सो गई। उसे इस तरह चैन की नींद सोते देख आदित्य ने हल्का सा झुककर उसके माथे पर किस किया और फिर बोला, जल्दी से ठीक हो जाओ बस, और मुझे पता है तुम्हारे लिए पढ़ाई और एग्जाम सब कितने मैटर करते हैं, बस इसीलिए मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, लेकिन बस तुम्हारी मेमोरी लॉस ना हो जाए, और तुम अगर कुछ महीने पीछे पहुंच गई तो फिर तुम्हारे एग्जाम का क्या होगा, मुझे इस बात की टेंशन है, और मुझे भी मत भूल जाना, आई लव यू सो मच सोना। इतना बोलते हुए उसने सुनैना के हाथ पर किस किया, फिर कुछ देर बहुत ही प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। लेकिन इसी बीच उसकी नजर वहां साइड में रखे अपने मोबाइल फोन पर पड़ी, जिससे उसे अनय के मैसेज के बारे में ध्यान आया। सुनैना का हाथ साइड में रखते हुए आदित्य ने फिर एकदम धीरे से उसका सिर भी अपनी गोद से हटाकर नीचे तकिया लगा दिया और एकदम चुपचाप से बिना कोई आवाज किए वो बेड से उठा। उसके पास अब कपड़े चेंज करने या फिर रेडी होने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि अनय का मैसेज उसे लगभग 10-10 मिनट पहले आया था और उसे लगा कि अब तक तो वो दोनों घर पहुंच भी गए होंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि वहां पहुंचते ही मनस्वी विराज को आजाद कर दे या फिर उसने उसे बाहर भेजने का पहले से ही इंतजाम कर रखा हो। ये सब सोचते हुए आदित्य ने खुद से कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, इतनी आसानी से बचकर नहीं निकलने दूंगा मैं अपनी सुनैना के मुजरम को, उसे सजा मिलेगी उसके किए की, नहीं तो वो दोबारा ऐसा कुछ, नहीं मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। इतना बोलते हुए आदित्य ने बस जल्दी से अपनी शूज पहने और मोबाइल फोन पॉकेट में रखता हुआ वो अपने रूम से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद उसने रूम का दरवाजा हल्के से बंद कर दिया। फिर नीचे आकर उसने स्वीटी और गीता को सुनैना का ध्यान रखने के लिए कहा। उन दोनों में से किसी ने भी आदित्य से नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। बस उन दोनों को इंस्ट्रक्शन देने के बाद आदित्य तुरंत ही अपने घर से बाहर निकल गया। घर के दरवाजे से बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले अरविंद का नंबर डायल किया और उसे इस बारे में इन्फॉर्म किया। आदित्य की बात सुनकर अरविंद ने दूसरी तरफ से कहा, ओके सर, मैं भी वहां पर पहुंचता हूं अपनी टीम के साथ। इस पर आदित्य ने कहा, नहीं टीम की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, तुम और नदीम ही आ जाओ सिर्फ। इतना बोलकर आदित्य ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो जाकर कार में पीछे की सीट पर बैठ गया और ड्राइवर से उसने कार स्टार्ट करने के लिए कहा। दूसरी तरफ
मनस्वी ने अपनी कार घर के बाहर वाले पार्किंग एरिया में रोकी। अनय ने एकदम अविश्वास से मनस्वी की तरफ देखा और बोला, सीरियसली मनस्वी, तुमने उस विराज को हमारे घर में छिपा कर रखा है? इससे ही पता चलता है कि वो तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या ही सफाई दोगी तुम मुझे। ये बात बोलते हुए अनय बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा था। इतना बोलते हुए वो हड़बड़ाहट में अपनी सीट बेल्ट खोलने लगा, लेकिन तभी मनस्वी ने उसके एक हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अनय प्लीज देखो, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम पर भरोसा करती हूँ तो तुम्हें विराज के पास लेकर चलूँ, और वो कहीं भी हो सकता है, और प्लीज तुम मिसअंडरस्टैंड मत करो, मैंने उसे यहाँ पर बस इसलिए रखा कि वो यहाँ पर सेफ रहे। मनस्वी की ये बात सुनकर अनय ने गुस्से से घूर कर उसकी तरफ देखा। उसकी ऐसी नजरों का मतलब समझते हुए मनस्वी तुरंत ही सफाई देती हुई बोली, सेफ से मेरा मतलब है आदित्य इस जगह के बारे में नहीं सोच पाएगा, बाकी मेरे होटल पर तो वो पहले ही नजर रख रहा होगा, है ना? मनस्वी ने अपनी तरफ से पूरी बात एक्सप्लेन करते हुए कहा, लेकिन अनय उसकी बातों से जरा सा भी कन्विंस नजर नहीं आ रहा था। उसने मनस्वी की तरफ उसी तरह डिसअपॉइंटमेंट से देखा, फिर उसका हाथ अपने हाथ से हटाते हुए उसने एक झटके से सीट बेल्ट खोली और कार में अपनी साइड से बाहर निकल गया। अनय के बाहर निकलते ही मनस्वी भी तुरंत दूसरी साइड से कार से बाहर निकली, पीछे से उसका नाम पुकारते हुए उसके पीछे पीछे आती हुई बोली, अनय अनय रुको, मेरी बात तो सुनो पूरी, और क्या बचपना है ये, तुम ऐसे ही हमेशा मुझे गलत समझते रहोगे क्या? तो चल चुकी है हमारी लाइफ और हमारा रिश्ता। उसकी ये आखिरी बात सुनकर अनय एकदम ही अपनी जगह पर रुक गया, फिर झट से पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, देखो देखो अब कौन ला रहा है हमारा रिश्ता बीच में, हमारा रिश्ता ये सारी बातों से अलग होना चाहिए ना, हमारा रिलेशन, तुमने ही बोला था ना कल रात, या फिर वो सब बस इमोशनल होकर ऐसे ही। अनय अपनी ये बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मनस्वी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। अपना सिर हल्के से नहीं महिलाती हुई बोली, नहीं वो सब कुछ भी इमोशनल होकर मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, मेरी सारी बातें जो भी हैं सबका मतलब है, और मैंने वो सब कुछ पूरे मन से कहा था, इसलिए अनय प्लीज, और ये विराज वाला मैटर इससे अलग रखो, और चलो मैं आज अब सॉल्व करके ही रहूंगी, बहुत हो गया अब इन सब की वजह से, मैं हम दोनों के बीच किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं चाहती। इतना बोलते हुए मनस्वी ने अनय का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लगभग खींचते हुए घर के अंदर जाने वाले दरवाजे की तरफ लेकर जाने लगी, लेकिन तभी अनय ने उसका हाथ ऊपर से थोड़ा कसकर पकड़ लिया और उसे वहीं गार्डन एरिया में रोकते हुए बोला, ऐसे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है, क्रमशः